ओ बाबा तुम सावन ना है, एक यही तमन्ना है। ओ बाबा तुम सावन ना है, एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुम सावनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है। चाहना है ओ बाबा तुम सावनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।
सभी स्वागत करते हैं सतीश गुप्ता भाई का। ये हम सभी बहुत भाग्यवान हैं कि आज हमारे बीच सतीश गुप्ता भाई जी पधारे। और भाई जी वैसे तो सबको परिचित है ही, क्योंकि भाई जी ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, हम यूट्यूब में भी सुनते रहते हैं, कैट प्रोग्राम्स करते रहते हैं। और एक हमारे सामने बाबा ने एक एग्जाम्पल बनाकर रखा है कि कैसे स्वस्थ जीवन के लिए कैसे योगी जीवन फाउंडेशन है। तो भाई जी ने अभी भी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे आरआरएम ग्लोबल हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल डायरेक्टर रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आज हम सुनेंगे भाई जी से तो कैसे अंतिम अवस्था और अंतिम सेवा कैसे बनाकर रखें। ओम शांति।
ओम शांति। अंतिम अवस्था, अंतिम सेवा। चलिए हम चलते हैं इस विषय पर। उरियान करने से पहले उस परम धाम घर में इस देह और देह की दुनिया से अपने मन बुद्धि को समेट लीजिए। मैं अशरीरी आत्मा परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हूं। चलिए उस पावर हाउस से कंबाइंड हो जाइए। ओम शांति। हमारी अंतिम अवस्था कैसी होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं हमारी अंतिम अवस्था कैसी होगी और अंतिम सेवा कौन सी होगी, बताइए। दीपा मैं ना बता, हमारी अंतिम अवस्था क्या होनी चाहिए? हाँ जी, कर्मातीत अवस्था होनी चाहिए और अशुद्धि होनी चाहिए। और अंतिम सेवा क्या करेंगे हम? मनसा सेवा हो, है जी, मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता, राइट। चलो समझते हैं कि हम जब थोड़ा गहराई में चलते हुए कैसी अवस्था हमारी और कब वो अवस्था बने। कहते ना अंतिम अवस्था कब होगी, कहते अंत में होगी। और अंत कब होगा, अंत कब होगा, कब होगा, जब हम नष्ट मोह स्मृति लब्धा। कब होगा मतलब कोई टाइम फिक्स है कि अंत 10 साल के बाद होगा? कभी भी हमारी अंतिम घड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती, कभी भी हो सकती है, अभी भी हो सकती है, क्लास में बैठे बैठे भी हो सकती है, राइट। अंतिम घड़ी तो कभी भी आ सकती है ना, तो हमारी अंतिम अवस्था कब होगी? अंतिम अवस्था जैसे बताया नष्ट मोह स्मृति लब्धा, एक सेकेंड में हम देह और देह की दुनिया को एकदम डिटैच हो जाएं, एकदम ये स्मृति रहे बस मैं और बाबा, या मैं भी नहीं बस बाबा ही रह जाए, है ना। बाबा कहते हैं अंत में क्या याद रहेगा, सिर्फ बाबा याद रहेगा ना। एक ही बस एक ही तरफ बुद्धि लगे, एक रस बुद्धि होगी ना। हमारी ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति बने। आज भी बाबा ने कहा ना योग की सिद्धि क्या है, योग की स्थिति क्या है, हमारी कर्मेंद्रियां भी कुछ मन मना भव, हमारी कर्मेंद्रियां एकदम शीतल हो जाए, मन बुद्धि संस्कार भी, मन में भी एकदम शीतल हो जाए, बुद्धि भी एकदम शीतल हो जाए, संस्कार सब आसुरी संस्कार ठंडे हो जाए, है ना। और सतो प्रधान संस्कार, बाबा ने कहा मीठा मीठा बनना। मीठे का अर्थ क्या होता है, मीठा। बाबा देखो मुरली शुरू होती है ना, बाबा एक बार मीठे बच्चे बोलते हैं और मुरली पूरी होने के बाद क्या बोलते हैं, दो बार बोलते हैं मीठे मीठे ना। क्यों दो बार क्यों बोलते हैं, शुरू में एक बार क्यों बोलते हैं? बाबा पहले हमारा अनादि स्वरूप देखते हैं, परम धाम वाला स्वरूप देखते हैं, हमें आत्मा देख करके ना, वो मीठा माना सतो प्रधान स्वरूप, मीठा मीठा माना सतो प्रधान, सातों गुणों से भरपूर परम धाम में बाबा के पास सब कैसे हैं, तो बाबा हमारा वो स्वरूप इमर्ज करके मीठे बच्चे फिर बोलते हैं, आत्मा सत्व प्रधान आत्मा को देखते हुए हमारी अनादि स्वरूप स्थिति को देखते हुए बोलते हैं। और मुरली सुना के फिर दो बार मीठे मीठे क्यों बोलते हैं, तो एकदम हमारा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप देख के शुरू करते हैं मुरली, और फिर बाद में हमारा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप, तो वो भी मीठा स्वरूप है, वो भी पांच सत्व प्रधान स्वरूप है ना, राइट। और सिकिल दे बोलते हैं साथ में, सिकिल दे मीठे मीठे सिकिल दे, मैंने 5000 हमें याद दिलाते हैं, 5000 वर्ष पहले तुम कैसे थे, देवी देवता थे, राइट। तो ऐसे बच्चों को फिर बाबा याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते कहते हैं ना, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, भाप बाद में क्या कहते हैं, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। और हम क्या बोलते हैं, रूहानी बच्चों की याद प्यार। याद प्यार का अर्थ पता है क्या होता है? एक बार मैंने बड़ी दादी से पूछा था, बड़ी दादी जी थे दादी प्रकाशमणि, मैं दादी आप तो हमेशा नमस्ते कहती हो, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, हमारी जो बहनें जब क्लास कराती है तो क्या बोलती हैं? रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद, मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आप ऐसे क्यों नहीं बोलते? बाबा ने कहा याद प्यार का अर्थ होता सकाश, करंट। तो बाप बच्चों को करंट दे सकता है, सकाश दे सकता है, याद प्यार। बच्चे बाप को करंट दे सकते हैं, दे सकते हैं, बच्चे बाप को करंट दे सकते हैं। एक अव्यक्त मूल्य में भी दिया हुआ ये बात, याद प्यार का अर्थ है सकाश, करंट। तो बच्चे बाप को याद कर सकते हैं, याद दे सकते हैं, पर याद प्यार नहीं दे सकते, राइट। तो राइट क्या है? रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। हम उनको झुकते हैं, रिगार्ड देते हैं, राइट। हम करंट नहीं दे सकते, ना हम शिव बाबा को दे सकते, ना हम ब्रह्मा बाबा को करंट दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना। मैं दादी फिर आप क्लास में अनाउंस करने के, टीचर बैठे कोई भट्टी होती है, टीचर बहनों की मीटिंग में होता है, कहते ड्रामा। मैं बाबा से कई बार मैंने पूछा, बाबा ने जैसे चल रहा चलने दो, आप नहीं कुछ नहीं बोलो। तो ड्रामा के अंदर राज है, ये भी सीक्रेट है ना, साक्षी दृष्टा। तो अंतिम अवस्था हमारी कैसी होगी? देखिए हमने जैसे योग की अवस्थाएं ना, सात अवस्थाएं, सात की भी आठ हैं कह सकते हैं। हम उस अवस्था में आज से मान के, हम किस अवस्था में हैं अभी, अभी हमारी क्या स्थिति है, हमारी वही अवस्था अगर वो स्थिति में, तो वही हमारी अंतिम अवस्था हो जाएगी। हम आठ में से कौन सी अवस्था में हैं, वही हमारी अवस्था, और उसी तरह हमारी सेवा हो जाएगी। हर अवस्था की अलग अलग सेवा है, इसलिए कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि अंतिम, सबकी अलग अलग होगी, और उसी के अनुसार हमारा नंबर बनेगा। माला में आठ की माला, अष्टतन 108 की माला, 16108 की माला, 9 लाख या कितने आगे, उसके हिसाब से बनेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं आज क्या हमारे लिए लॉटरी क्या है, कौन सी लॉटरी हमारे लिए, और हम कहाँ बैठते हैं, और फिर इसी को देखते हुए हम प्रत्यक्ष करें अपने अंदर, समझें कि हमें आगे बढ़ना है। और कितनी देर लगेगी आगे बढ़ने में, एक अवस्था दूसरी अवस्था में जाने में? 21 सेकेंड, ज़्यादा नहीं लगेगी। एक्चुअली हमारी हर समय अवस्था कैसी होनी चाहिए? एवर रेडी, माना अंतिम अवस्था, एकदम 1 सेकेंड में हम नष्ट हो, स्मृति लब्धा बन जाए, ऐसी स्थिति बन जाए। और हम कितने नज़दीक हैं उस अवस्था के, हम खुद ही देख सकते हैं। वैसे इसमें एक बात समझ लेने की आवश्यकता है, जब हम 18 हमारे 8 जन्म और 10-12 जन्म होते हैं ना सत्युग त्रेता में, तो हमारे कर्म के अकर्म होते हैं, हमारा मन 100% कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस समझते हैं, चेतन होता है, हमारा मन 100% चेतन होता है, जो हम सोचते हैं वही हो जाता है, हर संकल्प सिद्ध होता है, 100% कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। इसे देवताओं को कभी भी क्या नहीं आते, स्वप्न नहीं आते, क्योंकि 100% मन कैसा है, हमारा कॉन्शियस है। फरिश्तों का भी 100% मन कॉन्शियस है, इसलिए उनके हर संकल्प सिद्ध होते हैं, राइट। जब हम 20 जन्म तो हमारे वो वाले हो गए, एक जन्म ये वाला, और फिर जब सो कॉल्ड 22वां जन्म शुरू होता है, तो हम देहाभिमान हमारे अंदर आ जाता है, और उसके कारण अंदर विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आना शुरू होते हैं, विक्रम होने शुरू होते हैं, विकारों के वश होकर कर्म होने शुरू होते हैं। और जिससे फिर क्या होता है हमारे अंदर, जैसे जैसे हमारे विक्र, क्योंकि हमारे वैसे भी जो कुल की मर्यादा होती है ना, किसी भी कुल की मर्यादा, हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमारी ब्राह्मण सभ्यता, ब्राह्मण कल्चर है, तो वो उसके पहले जो कल्चर, आज भी जो अलग अलग कुल हैं उनकी जो मर्यादाएं होती हैं, जब भी हम कुछ उस मर्यादा के खिलाफ करते, उस कुल की मर्यादा के खिलाफ चलते थे, जब बचपन में हमें ज्ञान नहीं था, तो वो सारी फाइलें कहाँ जाती थी, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में, चित्त में जाती थी, और चित्त के अनुसार हमारा चिंतन, चेतन मन में चिंतन चलता है। तो हम जब भी हमने 22वें जन्म में जो भी हमने गलत कर, जो हमारी 21 जन्मों से हमारी जो मान्यता थी, सभ्यता थी, ब्राह्मणों की, देवी देवताओं की सभ्यता थी, जब हमने पहली बार गलत काम किया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश कर्म के, तो फाइलें सारी कहां जा रही थी? सबकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार नहीं कर रहा था, एक गिल्ट कॉन्शियस अपराध भावना अंदर हो रही थी, पैदा हो रही थी कि हम गलत किया, राइट। अभी तो नहीं करते थे, होता ना अभी भी कुछ गलत होता तो ब्राह्मण की हमारी जो कल्चर है, हमारे जो चार मर्यादा है, चार नियम है, तो क्या होता है, दिल खाती है ना, दिल खाती है ना, रात में फिर सपने, नींद को भी, नींद भी अच्छी नहीं आती, अमृतला उठते ही फिर वो संकल्प चलता है, अगर रात को पोता मेल नहीं दिया बाबा को तो अगले दिन फिर चलता है, उठते ही संकल्प चलेगा मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, होता नहीं होता, वही सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे हम सोने जाते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, राइट। तो हम द्वापर युग से जैसे हमने पाप कर्म किया वो कब कहाँ गए, सबकॉन्शियस माइंड में चित में गए, और वो सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार हमारे स्वप्न आने शुरू हुए पहली बार, त्रेता के पहले जन्म में हमें स्वप्न आने शुरू हुए, जो चीज़ हम दिन में नहीं कर पाए ये गलत किया वो दब गया, रात में स्वप्न में हमारी नींद के अंदर खराबी आई, राइट, फिर उससे फिर हमारा अमृत वेला खराब हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे करते फिर 22वें जन्म का सबकॉन्शियस माइंड क्या बन गया, उसके आधार पर 23वां जन्म मिला, वो अनकॉन्शियस बन गया, अनकॉन्शियस बना, अब अचेतन हो गया, हमें याद नहीं रहा कि तू सबकॉन्शियस क्या बन गया, अनकॉन्शियस, उसके आधार पर हमें 22वां जन्म मिला, फिर 23वें जन्म में हमारा फिर वापस जो गलत काम किए उसके आधार पर क्या, फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बना, और फिर क्या हो गया, उसके आधार पर हमें 22वें और 23वें जन्म के आधार पर हमको 24वां जन्म मिला, समझ रहे हैं ये बात, पापकर्म कहां जा रहे हैं, पापकर्म कहां जा रहे हैं, सबकॉन्शियस, इस जन्म के पापकर्म कहां गए, इस जन्म के सबकॉन्शियस में, और पिछले जन्मों के पापकर्म कहां है, अनकॉन्शियस माइंड में, राइट। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे अंदर जन्म लेते गए, फिर 22, 23, 24 के आधार 25वां जन्म मिला, 25वां जन्म का सबकॉन्शियस माइंड, अभी कितने जन्म हो गए, अभी कितने हो गए, 83 जन्म का, 82 जन्म का सबकॉन्शियस, या ही होंगे 83 जन्म का सबकॉन्शियस, और जब से हम बाबा के बच्चे बने तब से फिर उसका, उसमें जो फिर पाप कर्म हुए वो क्या हो गए, वो सबकॉन्शियस हो गए, राइट। चेतन मन, अब चेतन मन हो गया, अनकॉन्शियस हमारा चित्त, अब चित्त के आधार पर हमारा चिंतन चलता है। तो कितने जन्म का हमारे पास अनकॉन्शियस माइंड है, हाँ? चलो वो तो निकाल दो, 20-21 जन्म तो निकाल दो, अब 62 जन्म का हमारे पास कौन सा माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है। तो उस 62 जन्म के जो हमने पाप कर्म किए थे उसके आधार पे हमें 63 जन्म मिला है, और फिर उसके आधार पे 63 नहीं कहेंगे, 62 ही कहेंगे, एक तो दिव्य जन्म हो गए, दिव्य जन्म हो गए ना, ब्राह्मण जन्म तो दिव्य जन्म है ना, 62 जन्म में 63 जन्म हो गया ना हमारा, तो 61 जन्म के पाप कर्म का जो हमारे इकट्ठे कहा है अनकॉन्शियस माइंड में, और 62 और 63 जन्म के बाबा का बनने के पहले और बाबा का बनने के बाद वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, चेतन चित्त जिसे कहते हैं, उसके आधार पे हमारा अब चेतन मन। हम रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, राइट, याद रहती है, चेतन मन में चलती है, क्योंकि चित्त हमारा कैसा है, अब हमारा चित्त 90% चित्त हमारा कैसा है, सबकॉन्शियस माइंड है, और 10% मन कैसा है, कॉन्शियस माइंड है। तो 10% भारी है कि जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में डाल दो, कितना परसेंट डूब जाता है, 90%, 10% ही ऊपर रहता है। अगर 10% ऊपर पानी के ऊपर हवा चल रही है, 10% हवा राइट टू लेफ्ट चल रही है, तो राइट टू लेफ्ट क्या हिमखंड जो है, जो पत्थर का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा किस तरफ जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा, या अंदर का जो पानी का करंट है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो कहां जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा ना, क्योंकि 90% भी पार्ट नीचे। तो हम चाहते हैं हमारी, हम मुरली सुन के सारा दिन बाबा से वायदा भी करते हैं, बाबा बस सारा दिन मुरली को रिवाइज रियलाइज करेंगे, कर पाते नहीं, कर पाते क्यों नहीं, क्यों? ये सबकॉन्शियस माइंड हमें खत्म करना पड़ेगा, राइट। जो भी गलतियां हुई कहां गई हैं, सबकॉन्शियस माइंड में, इसी कारण से कॉन्शियस माइंड हमारा उसी के आधार पर काम कर रहा है। मुरली रोज सुनते हैं, भट्टी भी करते हैं, योग भट्टी, अब योग भट्टी में भी देख लो आप, आज सुबह मुरली सुनी थी ना, आज का वरदान याद है, समर्पण समर्पण के आधार पर स्लोगन याद है, बहुत अच्छी बात है। और फिर आज क्या व्यक्ति इशारा याद है? स्मृति के आधार पे ना, राइट। तो हमें वो हमेशा बजता रहे, अंदर मुरली अंदर बजती रहे। अगर हमारा चेतन मन अशांत चंचल और बेचैन है तो फाइलें कौन सी खुलती है? अशांत चंचल बेचैन की। और मन में फिर शरीर की बीमारियां, संबंधों के अंदर ऊपर नीचे, जो भी हमारे अंदर चल रहा है घर में या सेंटर पे कहां भी दुनिया में, वही बातें चलती रहती है। बाबा की मुरली में चलने के अलावा बाकी सब बातें चल जाती है। जबकि हम कहते हैं एक एक सेकंड का कनेक्शन 21 जन्मों से है ना भविष्य में, तो हमारी अंतिम अवस्था कैसी है? क्या मनुष्य को देह, मनुष्य का देह विमान है ना, मनुष्य के अंदर देहभान देह विमान है, देह मन के संबंध संपर्क पदार्थ और आसुरी स्वभाव आसुरी संस्कार में खोए हुए, तो अभी मनुष्य की स्थिति कैसी है? और पापकर्म भस्म कैसे होते हैं? मनमनाभव से। मनमनाभव ना आज का भी था नंबर वन मंत्र क्या है? मनमनाभव। और फिर उसका यंत्र कौन सा है? क्लीन और क्लियर बुद्धि, राइट, क्लीन और क्लियर बुद्धि। और फिर उसका मेन स्विच कौन सा है? क्लीन और क्लियर बुद्धि का मेन स्विच कौन सा है? सच्ची दिल साफ दिल, राइट। अगर मेरी दिल सच्ची साफ है, सच्ची साफ माना जिस दिल में मुझे अगर अपना दिव्य ब्राह्मण जन्म स्मृति में इमर्ज है, आज क्या था वरदान था ना, स्मृति में इमर्ज है कि मैं कौन हूं, ये मेरा दिव्य ब्राह्मण जन्म है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, नया जन्म है, मर्जीवा जन्म है। तो मेरे दिल में कौन होता है? जैसे बच्चे के दिल में कौन होता है? उसके माता पिता होते हैं। दिल में ना चेतना कॉन्शियसनेस शूटिंग बोर्ड होता है ना, उसमें एक बिंदु होता है, उसके आसपास सर्कल होता है, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल। जो पहला सर्कल उसको दिल कहते हैं, बुलजाई भी कहते हैं, उसमें शूट करते हैं ना तो हमें कितने मार्क्स मिलते हैं? 10 में से 10, 10 out of 10, राइट। आर्चरी में भी ऐसे ही होता है। तो वो दिल है, आत्मा का दिल, यहां से दिल आत्मा यहां आते ना, यहां नहीं चलता है डाइन चंद्र नीचे, तो वो चेतना, चेतना है हमारी कॉन्शियसनेस है, राइट। तो मेरे दिल में क्या है? मनुष्यों के दिल में क्या होता है? देहभान देवीमान, देवीमान के संबंध संपर्क, देवीमान के पदार्थ और देवीमान से पैदा होने वाले 5 आसुरी स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और आसुरी स्वभाव के वश को कर्म करने से जो हमारी आदतें बनती हैं, आलस्य अलबेलापन दोष दर्शन बदलने की भावना चिंता भय जल्दबाजी ईर्ष्या द्वेष बनती है, वो भी हमारे दिल में रहती है। फिर जब हमें ब्राह्मण जन्म मिल गया हमें, तो मेरे दिल में कौन होगा? मेरे माता पिता कौन है? शिव बाबा। यही दिल में बार बार रिवाइज और रियलाइज करते रहो, मेरे दिल में कौन है? सत्य की समझ का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, अर्थ सहित महसूस करो, सच्चे स्नेह का सागर, अतिंद्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, सत्य को परखने की शक्ति का सागर, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति का सागर, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति का सागर, समेटने की शक्ति का सागर, अशीली स्थिति का सागर है ना। वो तो हम अशीली स्थिति बनाने के अभ्यास कर रहे हैं, वो कौन है? अशीली सदा ही अशीली रहता है तो वो कहां बैठा है? कि बाबा कौन सा स्थान पसंद है? मेरा दिल पसंद है ना, नहीं? बाबा कहते हैं बाप को कौन सा स्थान पसंद है? हक से कहो कौन सा स्थान पसंद है? देना ये दिल नहीं, ये तो बॉडी का दिल है, ये आत्मा का दिल पसंद है ना। तो बाबा मेरे दिल, अगर मेरे दिल में बाबा है और इसको मैंने महसूस किया है, बार बार इस स्मृति को इमर्ज करता हूं और इसको रियलाइज सच्चे दिल से महसूस करता हूं कि बाबा मेरे दिल में बैठा हुआ है, कौन? अशीली स्थिति का सागर, निराकार स्थिति का सागर, बीज रूप स्थिति का सागर बैठा हुआ है यहां पे, सहन करने की शक्ति का सागर बैठा हुआ, समाने की शक्ति का सागर, सामना करने की शक्ति का सागर, सहयोग करने की शक्ति का सागर, सातों एनर्जी के बैलेंस का सागर बैठा हुआ है। उसके अंदर सातों एनर्जी का बैलेंस है, वो हीलिंग एनर्जी का सागर है। जरूरी है कि अगर मेरे अंदर हीलिंग एनर्जी हो, भगवान को क्या कहते हैं शिव बाबा को? हीलिंग एनर्जी का सागर। कुछ भी प्रॉब्लम होती है हीलिंग कहां से आती है? डॉक्टर भी क्या कहते हैं? आई ट्रीट ही क्योर्स, राइट। तो परमात्मा हीलिंग एनर्जी क्यों है? वो हीलिंग एनर्जी सागर, अगर सातों एनर्जी का बैलेंस है तो हीलिंग एनर्जी बनती है। ज्ञान है, पवित्रता थोड़ी कम है, पवित्रता है किंतु शांति थोड़ी कम है। शांति मीन्स बींग इन द प्रेजेंट, पवित्रता माना अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर दूसरे का भी सत्य स्वरूप इमर्ज करके व्यवहार करना। पवित्रता का अर्थ क्या है? ज्ञान क्या है? सत्य की समझ, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप में स्थित होना, यही ज्ञान है, ये समझ है ना हमें कि हम परम धाम में कैसे थे और जब सत्य में आए तो कैसे थे। वो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, उसको इमर्ज करना ही सत्य की समझ है। ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है वर्तमान। इसलिए बाबा कहते किसी के भी वर्तमान स्वरूप को मत देखो, उसके ओरिजिनल स्वरूप को देखो, परम धाम के स्वरूप को देखो और आदि देवी देवता स्वरूप को देखो, राइट। तो अपना स्वरूप इमर्ज करके, ये तो है ज्ञान। और फिर पवित्रता के अपना भी सत्य स्वरूप इमर्ज कर लो और सामने वाला का इमर्ज करके व्यवहार करो, ये पवित्रता है, राइट। शांति क्या है? जब हमने अपना ओरिजिनल स्वरूप इमर्ज कर लिया और उसका भी इमर्ज कर लिया तो पास को फुल स्टॉप लगाना सहज हो गया। पास को फुल स्टॉप लग गया तो हम अभी सत्य अपने सत्य उस जैसे पास अभी तक जो कुछ बीता हमारे बीच में दो व्यक्तियों के बीच में या संगठन के बीच में उसका फुल स्टॉप लग गया। पास को फुल स्टॉप लगा, अभी क्या हो गया? संकल्प 40 चल रहे थे एक मिनट, अब कितने हो गए? 4 ही रह गए, ABCD रह गया, आत्मा बाबा कनेक्शन और ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, फुल स्टॉप। इसे शांति कहते हैं। प्यार माना हम सब आत्माएं जो एक घर में रहती हैं या सेंटर पे रहते हैं, हम आपस में साथ साथ क्यों आए? कर्मों का हिसाब किताब है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, तो हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखना, चाहे कोई मेरी महिमा करे चाहे ग्लानी करे, दोनों को बराबर लेना, यही स्नेह है। बाबा सबको स्नेह देता है ना? नहीं देता है। नहीं देता है। आतंकवादी को नहीं देता है, चोर डाकू को नहीं देता, बीके नॉन बीके को अलग अलग देता है, बीके को ज्यादा देता है, नॉन बीके को कम देता है, नहीं, सबको बराबर देता है ना? नहीं, सबको बराबर, कोई पार्शियलिटी करता है? अभी नीट का एग्जाम हुआ, बीके के बच्चे ने, बीके एक बीके बच्चा है, रोज मुरली सुनता है और पढ़ता कम है, और एक नॉन बीके खूब पढ़ता है, तैयारी कर रहा है, तो बीके का बच्चा पास हो जाएगा, नॉन बीके का बच्चा फेल हो जाएगा, ऐसे पार्शियलिटी करेगा? नहीं, इक्वल है बिल्कुल, जो मेहनत करेगा फल मिलेगा, राइट। इसे कहते प्यार, स्नेह। जैसे एक माँ है ना, 4 बच्चे हैं, जो कमजोर है कुछ भी नहीं करता है, एक बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, तो कमजोर है एक, तो माँ का ध्यान किस पे रहता है? 4ों पे रहता है ना, और कमजोर पर ज्यादा रहता है, तो ये है स्नेह, राइट। तो हर एक की बराबर, जैसे ब्रह्मा बाबा कैसे करते थे, दादी कैसे करती थी, हर एक की पालना बराबर करती ना, महिमा और ग्लानी करने वाले, इसको स्नेह कहते हैं। सारे विश्व में एक भी आत्मा ऐसी ना हो जो मेरे को वो करे, तो इस तरह से जो ये अंदर से स्नेह का सागर है वो, और यो यहां बैठा है, मैं क्या करता हूं? मैं पार्शियलिटी करता हूं, जो महिमा करता है अच्छा लगता है, जो बुरा जो नहीं करता है वो ग्लानी करता है वो खराब लगता है, तो मैं स्नेह का सागर हुआ, मास्टर स्नेह का सागर हुआ, मेरे को पास्ट इसको देख के उसका मेरे को कल मेरे को ऐसे बोला था विचार आया, तो शांति का सागर हुआ, शांति तो अशांत हो गया मैं देख के उसको, नहीं अशांत हो गया, नहीं हो गया, किसी ने मेरे साथ कल ऐसा किया था, सुबह मेरे को ऐसे बोला था, अशांत हो गया। शांति माना बीइंग इन द प्रेजेंट, लव मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, नहीं, जब ऐसी स्थिति बनती है ना तो यही तो है हमारा अंतिम स्थिति, मेरी कैसी है, शांति है या भाषण है या भाषणा है। तो ये जो सत्य की समझ हमें जो दिल में मेरे अंदर ये है ना, इसी को रिवाइज कर, आपने सुना होगा जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं, तो हमको दो गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट है हमारी, कौन कौन सी है? दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट। तो दिल में अगर बाबा है तो सच्ची दिल है, क्यों सच्चा बाबा दिल में है ना, तो इसे कहते सच्ची दिल। यस, अतिंद्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर यहां बैठा हुआ है। तो जैसे ही हम महसूस करते, जब हम जैसे ही बाबा दिल में आया, और उसकी श्रीमत क्या है, साफ दिल क्या है, उसकी श्रीमत क्या है, बाबा की पहली पहली श्रीमत पवित्र भव योगी भव। तो पवित्र है तो योगी है, पवित्रता है तो योग है, पवित्रता नहीं है तो योग नहीं है। पवित्रता, बेसिक पवित्रता क्या है? अपना अनादि स्वरूप और आदि देवी के स्वरूप इमर्ज में है, बुद्धि में स्मृति इमर्ज है, और सामने वाले का भी वो स्वरूप इमर्ज करके व्यवहार करता हूं, तो ये पवित्रता है। ऐसी स्थिति, ऐसी पवित्रता है हमारे अंदर तो योग लगता है। किसी की तरफ भी थोड़ी बुद्धि जाती है ना, किसी भी देहधारी की तरफ, तो वो हमारा योग लगेगा नहीं लगेगा। और जितना बाबा से योग लगेगा उतना पवित्रता बढ़ेगी, और जितनी पवित्रता बढ़ेगी उतना और ज्यादा योग लगेगा, जितनी और योग लगेगा और पवित्रता बढ़ेगी। एक दिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, संपूर्ण पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन में भी पवित्रता आ जाएगी तो संपूर्ण योगी बन जाएंगे। नहीं तो ये साफ दिल है, इस पर जरा भी श्रीमत में मनमत परमत नहीं है, सिर्फ बाबा की डायरेक्शन है। तो ये सच्ची दिल साफ दिल है। तो ये मेन स्विच ऑन है ना, थोड़ा भी देवी मानव आया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, दिल सच्ची साफ रहेगी, फिर तो सच्ची साफ नहीं रहेगी, तो मेन स्विच ही ऑफ हो जाएगा। तो बुद्धि की लाइन क्लीन क्लियर रहेगी, तो बुद्धि की लाइन क्लीन क्लियर का मतलब क्या है, दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तंत्र खुल गया, दिव्य दृष्टि एक्टिव हो जाती है। दिल सच्ची साफ है तो दिव्य दृष्टि एक्टिव है, अगर दिल सच्ची साफ नहीं है तो दिव्य दृष्टि ज्ञान कंठ से नेत्र क्या हो गया, देहभिमान रूपी धूल आंखों में गिर गई, ये आंख नहीं मतलब वो नेत्र बंद हो जाता है। बंद हुआ तो क्या हुआ, ये ज्ञान पढ़ते भी समझ नहीं आता, मुरली पढ़ते सुनाते भी समझ नहीं आती, उसकी गुह्यता उसकी गहराई समझ में नहीं आती। जैसे मीठा शब्द ना, मीठे शब्द की गहराई मुझे नहीं आती थी। एक बार मुरली चली थी, बाबा बाबा मिश्री का पहाड़ है, स्वीट का पहाड़ है, और तुम कौन हो, स्वीट बच्चे, स्वीटेस्ट बच्चे, देवताओं को स्वीटेस्ट कहते हैं ना। तो फिर मेरे को बुद्धि चली, फिर बाबा से हम चिंतन करते हैं, रिवाइज और रियलाइज सच्चे दिल से, मैं बाबा आप तो स्वीट के पहाड़ हो, देव देवताएं स्वीटेस्ट हैं, और हमें भी, बाबा कहते हैं आपको भी स्वीटेस्ट बनना है, तो इसका क्या अर्थ है। तो बाबा ने तैसे, तो बाबा ने बुद्धि में कहा बच्चे स्वीटेस्ट का मतलब क्या है, देवताएं सतो प्रधान है ना, देवताएं सतो प्रधान है, और बाबा कौन है, सातो एनर्जी का सागर है, वो तो सतो प्रधान नहीं कहेंगे, बाबा को तो नहीं कहेंगे ना, और तुमको भी क्या बनना है, बाप की याद से अपने आप को सतो प्रधान बनाना है, तो यही तो स्वीट है, यही तो मीठा है, राइट। तो मीठा मीठा माना सतो प्रधान, राइट। इस तरह से जब हम गहराई में जाएंगे ना, तो एक महावाक्य की गहराई में जाते हैं ना, तो हमारे दिल, तो तीसरी आंख खुलते तो हमें आत्मा की गहराई समझ में आती है, ज्ञान की गहराई समझ में आएगी, बुद्धि में समझ आती है, मन से मन मनाभव होते हैं, समझ आने से हमारे पापकर्म भस्म नहीं होते हैं, राइट। समझ आने से बुद्धि की, मन की, आत्मा की समझ, ये ज्ञान की गहराई, आत्मा की गहराई, आत्मा कैसे शरीर को चलाती है, यहां बैठ के मन के द्वारा चलाती है ना, आत्मा मन के माध्यम से एनर्जी बॉडी में जाती है, तो समझ आए कि मैं आत्मा सात चैतन्य आत्म को जो पूंजू, और मन मना हमारे विचार भावना वृत्ति और स्मृति टीम, उसके द्वारा एनर्जी बॉडी में जा रही है, और मेरा भोजन शुद्ध सात्विक है तो बॉडी उसको रिसीव करती है, मैं रोज सैर करता हूं प्रॉपर ढंग से बाबा की याद में तो मेरी एनर्जी बॉडी रिसीव करती है, अगर मैं प्रॉपर नींद करता हूं तो आत्मा एनर्जी रिसीव करती है, और मैं अगर प्रॉपर दवाई भी लेता हूं, मेरी ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कुछ और है, तो एनर्जी रिसीव होती है, नहीं तो नहीं होती है, होती है रिसीव, शुगर बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए तो बॉडी रिसीव करेगी एनर्जी। ये आत्मा की गहराई है कि आत्मा यहां बैठ के सातो चैतन्य आत्म ऊर्जा से बॉडी, मन के माध्यम से बॉडी को एनर्जी दे रही है, और फिर मेरा भोजन कैसा होना चाहिए, सैर कैसे, नींद कैसी होनी चाहिए, दवाइयां भी ले रहा तो कैसी होनी चाहिए, राइट, ठीक टाइम पे होनी चाहिए, सब होना चाहिए। तो ये आत्मा की गहराई। फिर परमात्मा गहराई क्या है, परमात्मा सात चैतन्य आत्म ऊर्जाओं का सागर है, पावर हाउस है, परमात्मा ही मुरली के द्वारा टीम को, मन को पॉजिटिव बनाता है, राइट, और फिर शिक्षा और सावधानी देता है, बच्चे तुम्हारा भोजन कैसा हो, तुम्हारी नींद कैसी हो, नहीं बता दे, नहीं कर्मों का हिसाब तक चुक तो करने के, डॉक्टर से दवाई खा रहे हो वो भी टाइम पे देते रहो, नहीं रोज परमात्मा की याद में सैर भी करो, कहता नहीं कहता। फिर करंट ABCD ना, आत्मा बाबा कनेक्शन, कनेक्शन कैसे खींचो, करंट कब खींच सकते हो, करंट कब खींच सकते हो, चार बेसिक गुण होने चाहिए पहले, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता और सभ्यता। करंट खींचने के चार बेसिक गुण चाहिए, कौन कौन से चाहिए, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता और सभ्यता। सत्यता क्या है, अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप में स्थित हो गए, ऑलरेडी ये बातें रिवाइज हो चुकी हैं, उसमें स्थित हो गया, संकल्प बोध कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, सपन में आना, राइट। और फिर पवित्रता क्या है, अपना वही स्वरूप इमर्ज करके सामने का वो स्वरूप इमर्ज करके व्यवहार करना। निर्भयता क्या है, बुद्धि रूपी आंख परम धाम में लगी रहे बाबा के पास, और मन रूपी आंख कहां लगी रहे? सुख धाम में अपने लक्ष्य पे लगी रहे। मेरा लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण के समान बनना है ना, लक्ष्मी नारायण के समान बनना, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना, यही मेरा लक्ष्य है। तो मन में लक्ष्य 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 दिखाई देना चाहिए, मन में लक्ष्मण रेखा लक्ष्य दिखाई देना चाहिए हमेशा, वहीं लगे रहे। तो मेरी बुद्धि भी यहां नहीं है और मन भी यहां नहीं है, डर किस बात का है? फिर डर कहां लगता है? मेरी बुद्धि इस दुनिया में होगी तब तो डर लगेगा, मन इस बुद्धि में तब मेरा बुद्धि यहां ना मन यहां पे, राइट? तो डर नहीं लगेगा ना। और सभ्यता, सभ्यता मन चार नियम चार मर्यादाएं, पावरफुल अमृत वेला, उससे पहले हमारी क्या है? पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, हमारा सत्संग बाबा और मुरली का संग, और फिर शुद्ध सात्विक भोजन, और दैवी गुणों की धारणा, दिव्य गुणों की धारणा, दैवी गुणों की नहीं दिव्य गुणों की धारणा, और फिर अमृत वेला पावरफुल, मुरली अटेंशन सारा दिन, मुरली का मनन चिंतन, और सोने के पहले सच्चा सच्चा पोता मेरे बाबा को देना, राइट? तो ये हमारी क्या है? चार नियम है, ये हमारी कल्चर है, ये ब्राह्मण सभ्यता है। एक ब्राह्मण कभी भी अमृत वेला मिस कर सकता है? चार बजे सो सकता है? सो ही नहीं सकता है। मुरली मिस कर सकता है? हमारी कल्चर है, सारा दिन मुरली का ही मनन चिंतन चलेगा उसको, और बातों का दुनियावी चिंतन नहीं चलता, और लास्ट में सोने के पहले बिना पोता मिल दिए बाबा सो नहीं सकता है सच्चा ब्राह्मण, राइट? नहीं, तब ये है। तो फिर सत्य की समझ, फिर चार बातें और चाहिए करंट खींचनी है, तो सत्य की समझ की गहराई, जितना गहराई में जाओगे सत्य की समझ की, उतना उतना समझ में आएगा ना, तब आपके अंदर धैर्यता, पेशेंस, क्योंकि बहुत समय लगा है, बहुत सारे पाप कर्म है, तो धीरे धीरे कटेंगे ना, पेड़ धीरे धीरे उठता है ना, एकदम तो नहीं उठता है, तो धैर्यता, फिर गंभीरता, जितनी समझ आएगी तब तो आत्मा के अंदर करंट, मेरे पहले आत्मा में करंट नहीं है, फिर मेरी टीम ही इतनी नेगेटिव भरी पड़ी, इतनी नेगेटिव विचार चलते, नेगेटिव भावनाएं चलती है, नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव वृत्ति है, तो समझ में आई ना, गहराई में गया तो समझ में आई ना, फिर मेरे खान पान ही ठीक नहीं है, मेरे को ये खाना, देर से सोना, देर से उठना, 12 बजे सोता हूँ, उठता हूँ, फिर उठ के नींद में अमृत वेला भी सो जाता हूँ, मुरली में भी कभी पहुंचा कभी नहीं पहुंचा, मुरली में भी चार्ज उससे चलते हैं, मुझे पता ना अपने अंदर गहराई तो पता ना, ऐसे आत्मा का समझ में आया कि परमात्मा कौन है, परमात्मा से मेरा इतना प्यार है, संबंध के आधार पर मिलेगा ना, तो करंट कैसे खींचेंगे? सत्यता है, पवित्रता है, निर्भयता है, सभ्यता है, ये भी तो उसे गहराई में जाना पड़े ना, तब तो समझ में आएगा। यस आई, पेशेंस चाहिए, राइट? एकदम नहीं आएगी पेशेंस, धैर्यता, फिर गंभीर होकर, जब पता धैर्यता आई ना, हाँ मुझे करना है, खींचना है, तो सीरियस होकर लग जाते हैं, कैजुअली नहीं, कर लिया अमृत वेला हो गया, अरे मुरली तो सुन ली ना, चार्ट भर दिया ना, एक मिनट में ऐसे चार्ट देखा भर दिया, अच्छा बाबा साहब ठीक है, मन मन में ही भर लिया और गुड मॉर्निंग गुड नाइट करके सो गए, सीरियस होकर करना ना, सच्चाई सफाई से करना ना, नींद कैसे आएगी? आएगी नहीं, अच्छी नींद नहीं आएगी, अच्छी नींद नहीं आएगी तो अमृत वेला कैसा हुआ? सबकॉन्शियस माइंड रात को चालू हो जाएगा और सपने आने शुरू हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी नहीं, सुबह से उठ के फिर क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड भी रात को अमृत वेला पे वही चलता रहेगा, ठीक है? नहीं, नींद क्या तो अमृत वेला तो आनंद वाला तो नहीं हुआ, तो मतलब बेसिकली क्या है, तो मेरी स्थिति कैसी है? दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तस्मिन खुला हुआ है, तो ज्ञान की गहराई जब इसमें आएगी ना, तो ये कनेक्शन तब तीसरे तक खुलेगा, तो ये फिर ध्यान आएगा कि मुझे ये करना है, सत्य के समय गहराई, धैर्यता, गंभीरता, और फिर सहनशीलता। आज कर्म भोग आ गए, कोई बुखार आ गया अचानक तो क्या करें, पेट में दर्द हो रहा है तो क्या करें, उसको सहन करके समाना पड़ेगा ना, टाइम ही नहीं है, पेपर तो देना है ना, पेपर मेरे डिले हो जाएगा क्या, तो मुझे सहनशीलता का व्यवहार में सहनशीलता होगी ना, तब जा करके कोई मुझे कुछ गलत बोल दिया, कोई बात नहीं बोलने दो, जैसे जब होता है मुझे काम होता है ना, क्या करते हैं, वी इग्नोर एवरीथिंग, हम अपने लक्ष्य में लगे रहते हैं, नहीं लगे रहते, सीरियस होकर लगे रहते ना, तो हमें सीरियस होकर लग जाना चाहिए, और सहनशीलता, तब हम करंट खींच सकते हैं। चार बातें नहीं तो एक मुरली थी इसी के ऊपर, याद होगा आपको, बाबा से करंट खींचने के लिए क्या चाहिए? समझ के, समझ धैर्यता गंभीरता और सहनशीलता, चार बातें चाहिए ना। जब ये चारों बातें करंट खींचने, करंट आने शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, ड्रामा, डिफॉल्ट ड्रामा है ना। तो मेरे साथ क्या, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ है, फुल स्टॉप लगाने की ताकत आएगी। जब करंट खींचने याद आएगी तो अपना परमधाम वाला स्वरूप याद आएगा, अपना आदि देवी देवता स्वरूप याद आएगा कि अब घर जाना है। वो खाली मुझे नहीं जाना है, सबको भी लेके जाना है नहीं, और मुझे भी क्या करना है, पास को फुल स्टॉप लगाना पड़ा। तब पास को फुल स्टॉप लगता, नहीं तो लगता नहीं है। फुल स्टॉप लगता है तो अनादि स्वरूप याद आता है, परमधाम वाला आदि देवी देवता, तब जाकर उसको, तब मेरा स्मृति में इमर्ज होगा, तब तो पवित्रता आएगी। ज्ञान का मतलब, ज्ञान से पवित्रता कहते हैं ना, तो जब ड्रामा को फुल स्टॉप लगता है तब हमें अनादि स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप बुद्धि में इमर्ज होता है और तब हमारे अंदर पवित्रता का शुरुआत होती है। राइट, जब अपना, तो पहली पवित्रता कौन सी है, पहले लेवल की पवित्रता अपना अनादि स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप इमर्ज हुआ। दूसरे लेवल की पवित्रता कौन सी है, अपना इमर्ज हुआ, सामने वाले का इमर्ज हो गया। फिर रिटर्न जर्नी में क्या देखते हो, जैसे जैसे फाइलें खुलती ना, सामने जिनके साथ आप सालों से रह रहे थे कोई बात नहीं थी, सब अच्छा चल रहा था, अचानक क्या होता है, उससे उसकी तरफ लगाव होने लगता है, उसके झुकाव आने लगता है, उसके किसी के प्रभाव में आने लगते हैं या टकराव हो जाता है। तीसरे लेवल की पवित्रता ये, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव, राइट राइट, होने लगता नहीं लगता। आपने देखा वो सेंटर पे रहते हैं, घरों में रहते हैं, अचानक क्या होता है, वही व्यक्ति बहुत अच्छा लगने लगता है ना, वो व्यक्ति का तो झुकाव हो जाता है, या कोई कहीं पर जाते हैं उसके प्रभाव में आ जाते हैं। प्रभाव में आना माना, आपने किसी क्लास सुनी उसके प्रभाव में आ गए तो क्या हुआ, पवित्रता कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। बाबा की जगह कौन आ गया, वो व्यक्ति आ गया ना, बहन भाई कोई भी हो सकता है, तो उसके प्रभाव में आना माना उसकी प्रजा बन जाना था ना, मुन्नी में पीछे नहीं, बाबा की प्रजा बनना, बाबा के साथ आ जाना, जाना है या उसके उसके साथ घर रॉयल फैमिली में आना है, या उसके उसके साथ आना, बाबा के साथ आना, तो उसकी क्लास में क्या है, कुछ भी नहीं है। क्लास कराने वाला भी कौन है, उसके द्वारा शिव बाबा ही है, राइट। तो प्रभावित टकराव भी किसी से नहीं, ये भी है। फिर क्या होता है, चलते चलते क्या होता है, रिटर्न जर्नी में कई बातें ऐसी हो जाती है जो उसे क्वेश्चन आना शुरू, क्या क्यों कैसे, वैध संकल्प चलना भी अपवित्रता है, चौथे लेवल की अपवित्रता होगी। काम विकार तो छोड़ा, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह अहंकार आता है, यह भी तो अपवित्रता है, राइट। क्रोध आना, सूक्ष्म रूप में क्रोध आना, लोभ आना, रोब डालना किसी के ऊपर, लोभ अच्छा लगना, मोह वो जो है वो व्यक्ति किसी का मोह, मतलब सेवाधारी के रूप में चलो मोह हो जाता है, उसके साथ ही काम करेंगे, उसके साथ ही डिनर करेंगे, उसके साथ ही खाना खाएंगे, ये भी तो मोह है ना। अहंकार आना, मेरी महिमा हुई, नाम मान शान मिला, मैंने सेवा की बहुत अच्छी सेवा, अहंकार आ गया, तो ये भी तो अपवित्रता है ना। फिर ये हो गया कौन से लेवल की, पांचवें लेवल की। छठे लेवल की पवित्रता क्या हुई, आलस्य आना भी अपवित्रता, अलबेलापन आना भी, कर लेंगे हो जाएगा, किसी के अवगुण दिखाई देते हैं भी अपवित्रता है, किसने हमारे साथ गलत किया उसके प्रति बदला लेने की भावना आना, यह भी अपवित्रता है, राइट। संशय आना किसी पे, निश्चय विश्वास होना, ये पवित्रता है सब पे, कि तुम निश्चय संशय और अनुमान लगाना अपवित्रता है, चिंता आना अपवित्रता है, डरना अपवित्रता है, बेफिक्र बादशाह निर्भय, जल्दबाजी करना भी अपवित्रता है। हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही ना, हम क्यों, किस बात का प्रेशर है, पेशेंस रखनी पड़ेगी ना, और ईर्ष्या द्वेष करना भी अपवित्रता है। कंपटीशन कंपैरिजन, हम यूनिक है ना, हर आत्मा यूनिक है, हमने दादियों को देखा, कभी उनके अंदर कंपटीशन कंपैरिजन था क्या, कभी भी नहीं था, ईर्ष्या द्वेष थी क्या, थी नहीं। तो इस सात छह लेवल की पवित्रता आई ना, तब सातवें लेवल की पवित्रता ब्रह्मचारी आती है, क्यों, ब्रह्मा बाबा सदा अलर्ट थे, एक्यूरेट थे, आलस्य अलबेलापन नहीं था, गुण दर्शन और रहमदिल थे, निश्चय और विश्वास था नहीं था, चिंता बेफिक्र बादशाह थे और निर्भय थे, और पेशेंस थी, धैर्यता थी, और विश्व कल्याणकारी का भाव, तो ऐसे ब्रह्मा बाबा जैसे चलन, इसको बोलते संपूर्ण पवित्रता, राइट। तो ऐसी पवित्रता हमारे अंदर आई है, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, काम विकार की एंटीडोट क्या है? ज्ञान स्वरूप और पवित्र स्वरूप। क्रोध की एंटीडोट क्या है? शांत स्वरूप और स्नेह स्वरूप। लोभ की एंटीडोट क्या है? अतीन्द्रिय सुख। मोह की एंटीडोट क्या है? आनंद। और अहंकार की एंटीडोट क्या है? सर्वशक्तिवान स्थिति। राइट, आठों शक्तियां तो अहंकार आएगा, आ ही नहीं सकता। राइट, तो ये स्थिति ब्रह्मचारी स्थिति, तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता, मन से वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक पवित्रता। ऐसी आत्माओं को सत्संग में रहती है आत्मा सदा, ऐसी आत्मा सदा ही शुद्ध सात्विक भोजन, ना खाली मुख का भोजन, आंखों का भोजन भी शुद्ध सात्विक, देखना पढ़ना भी शुद्ध सात्विक, सुनना भी शुद्ध सात्विक, श्वास भी इसी स्थिति में लेना, और खाना पीना भी शुद्ध सात्विक, और बोलना भी शुद्ध सात्विक। तो ये पवि, ये हमारा भोजन, और ऐसे आत्मा को दिव्य गुण आ जाते हैं उनके अंदर, और ऐसी आत्मा पावरफुल अमृत वेला करती, मुड्डे अटेंशन और वेंटिलेशन करती, ऐसी आत्मा फिर शांत रहती, उनको कभी एक संकीर्ण भी संकल्प नहीं चलता, एकदम सेकंड में फुल स्टॉप। ब्रह्मचारी आत्मा को क्या, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगता, और ऐसी आत्मा शांति की अवस्था में रहती, विचार ही नहीं चलता है, एबीसीडी के अलावा पांचवा विचार नहीं चलता, फुल स्टॉप लगा एबीसी बस, तीन चार संकल्प भी चलते और प्यार माना। फिर ऐसी आत्मा जो बाबा से कंबाइंड है कि हर काम करती है, उनको क्या होता है, प्यार, सबके प्रति प्यार, हर आत्मा का रोल अच्छा लगता है, नहीं वो गलत भी बोल रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, मुझे लगता है मेरे हिसाब तब चुप्त हो रहे हैं, फील नहीं होता है, फील होता है क्या, फील नहीं होता है। तो ऐसी आत्मा है जो, ऐसा आत्मा है को फुल स्टॉप एकदम लगता है, और वो साथ में बाबा को देखते हैं ना, बाबा कैसे सबकी पालना कर रहा है, सबकी पालना कर रहा है, तो हमारे अंदर भी वो स्नेह, ऐसा सत्य और निस्वार्थ स्नेह आ जाता, तो ये स्थिति हमारी बनती जाती है, बाप समान स्थिति बनती जाती है। राइट, तो जैसे स्नेह सबके प्रति, सारे विश्व में हर आत्मा के प्रति बनती है, तो हमारे दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाती है, हम सूक्ष्म वतन में बाद दादा गोद में पहुंच जाते हैं। तो ये इस दुनिया की स्थिति में क्या क्या हुआ, एक तो देवीमान से देहीमानी बन गए, देहीमाना बाबा की मुंडी का मनन चिंतन करना, रिवाइज रियलाइज करना, एक तो ये हमारी अंतिम अवस्था हो सकती है कि हम रोज मुरली का मनन चिंतन बहुत एक्यूरेट रिवाइज रियलाइज करते हैं, दिल सच्ची साफ रखते हैं और बाबा की मुरली का रिवाइज रियलाइज करते हैं, और देही हमारी स्थिति से आत्मानी स्थिति माना, अब हमारे व्यवहार में ज्ञान दिखाई देता है, प्रैक्टिकल पवित्रता दिखाई देती है, शांति दिखाई देती है, व्यवहार में दिखाई देती है, और सबके प्रति प्यार दिखाई देता है। ये कैसी स्थिति है, ये स्थिति जब प्रैक्टिकल व्यवहार में दिखाई देने लगती है, इसको आत्मानी स्थिति कहते हैं, कि आत्मा के गुण कर्म में दिखाई दे रहे हैं। देही मानी स्थिति अंदर की स्थिति है, पुरुषार्थ की स्थिति, और आत्मा मानी स्थिति बाहर व्यवहार में स्थिति है। तो ये हमारी स्थिति भी, ये हमारी अवस्था भी अंतिम अवस्था हो सकती है। राइट, पवित्रता ज्ञान स्वरूप, पवित्रता शांति और स्नेह सबके प्रति, तो ये स्थिति कैसी है, आत्मा मानी स्थिति। तो इसमें भी हमारी सेवा हो रही है, देही मानी स्थिति में भी हम बाबा की मुरली को, जैसे हम लोग बार बार मुरली पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई लोग हमें भी देखते हैं कि देखो ये और काम नहीं करे तो बाबा की मुरली बैठ के पढ़ रहे हैं, एक पॉइंट लाइन रिवाइज कर रहे हैं, फिर वापस जेब में रख रहे हैं, फिर दूसरी लाइन रिवाइज, तो इससे भी सेवा तो हुई ना, दो चार लोगों को तो दिखता है, दिखाई देता है ना, आसपास दिखते हैं, फिर हमारे व्यवहार में शांति है, पवित्रता है, प्यार है, तो सेवा हो रही ना, होती ना सेवा। हमारे व्यवहार से लोग कहते हैं देखो बाबा का बच्चा होता है, ऐसा होना चाहिए, मैंने इसको इतना व्यवहार किया किंतु ये फिर भी प्यार से बात कर रहे हैं, शांत है, बिगड़े नहीं है, और कोई होता तो हमको दोस्त सुनाता कि तू, इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा ना, नहीं लगता ना, ये भी सेवा हुई ना। अब मैं ऐसी स्थिति में शरीर छूटा तो क्या है, ये भी सेवा, तो स्थिति तो अच्छी है, हाँ तमारी स्थिति है। फिर इससे क्या होता है, जब सबके प्रति प्यार पैदा हो जाता है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाती है, तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, इसी बीच में क्या हो रहा है, हमारा व्यवहार समझ बढ़ रही ना, समझ बढ़ के साथ साथ हमारा सूक्ष्म शरीर भी, मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारे विचार भावनाएं वृत्ति और स्मृति बदल रही है, तो मन में लाइट जा रही है, ज्ञान की लाइट, पवित्रता की लाइट, शांति की लाइट जा रही है, तो हमारा सूक्ष्म शरीर तैयार हो रहा है, बुद्धि की लाइन क्लीन हो गई ना, क्लियर हो गई, तो हमारे अंदर ये एनर्जी आई, तो इससे क्या हो रहा है, फिर हमारे अंदर दिव्य बुद्धि रिपीलिट एक्टिव होगी, तो हम कहां पहुंच जाते हैं, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं। तो पहली स्थिति कौन सी है, देहीमानी स्थिति अवस्था, दूसरी आत्मानी अवस्था, तीसरी जो अवस्था है कर्मयोगी अवस्था, जब हमारी स्नेह रहता है, प्यार रहता है, सबके प्रति शांति रहती है, तो हमारी हर समय कर्म करते भी योग लगा रहता है, तो ये भी एक अवस्था हो गई कि हर कर्म करते भी हमारे योग लगा हुआ बाबा के साथ व्यवहार में, तो ये आत्मानी स्थिति वालों की कर्मयोगी अवस्था हो सकती है। देहिमानी स्थिति में प्रैक्टिस करते करते वो अवस्था हो जाएगी और वैसे ही उसको देख के हमारी सेवा बढ़ती जाएगी, राइट। फिर उसके बाद हमारी जब वे बुद्धि रूप लेफ्ट एक्टिव होते तो हम कहां पहुंच जाते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाते हैं, तो हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ये स्वीट साइलेंस की अनुभूति है, राइट। क्या है ये विधेयी अवस्था है। तो विधेयी अवस्था में अतीन्द्रिय सुख में रहता हूं, बाबा से भिन्न संबंधों के अनुमिलन की अनुभूति करता रहता हूं, तो इसमें भी मेरी सेवा होती है, राइट। मैं अतीन्द्रिय सुख में रहता हूं तो मेरी अवस्था से सेवा हो रही नहीं हो रही। देह में रहते भी देही हूं, देह से देह में देह यहां पर है कि तो यहां रहते भी मैं ये देह और देह की दुनिया से परे हूं, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ कभी मां का संबंध, कभी बाप का संबंध, कभी टीचर का संबंध, कभी सुदर्शन जी का फिर आ रहा हूं, कभी सतगुरु के रूप में मैं बाबा के साथ सूक्ष्म वतन पर उसमें जा रहा हूं, है ना, कहां पर जा रहा हूं, साकार आकार निराकार की रिल कर रहा हूं, बंधु के रूप में सारी बाबा को सारा बोझ देके हल्का हो रहा हूं, सखा के रूप में बाबा से अपनी जो कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं बाबा से शेयर कर रहा हूं, फिर बाबा साजन के रूप में सजनी के रूप में सजा रहा है देवी गुणों से, सजन के रूप में मेरी रिफाइंड सर्जरी कर रहा है अंदर जो और गलतियां ना सूक्ष्म सूक्ष्म, तो सोलह कला संपूर्ण बना रहा है सर्जन, सोलह कला संपूर्ण बनाता है। साजन क्या करता है, सर्वगुण संपन्न बनाता है, कि सर्जन क्या करता है रिटर्न जर्नी पे छोटी छोटी प्रॉब्लम जाती है लाइफ में क्या करता है सर्जन, ऑपरेशन करता जाता है ना, फाइलें खुलती रहती हैं, और बाबा क्या करता है हमारे सर्जन के रूप में हमारा ऑपरेशन करके हमको संपूर्ण बनाता है, हर गुण में 100% बनाता जाता है, सोलह कला बना हर गुण में 100% बनाता जाता है, सोलह कला संपूर्ण बनते जाते हैं, वही हमको संपूर्ण निर्विकारी बनाता है। संपूर्ण निर्विकारी माना आलस से भी विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार है, कि तू संपूर्ण माना आलस से भी खत्म, अरवेलापन भी खत्म, चिंता भी खत्म, भय भी खत्म, ये संस्कार भी खत्म हो जाते हैं संपूर्ण, यही वही हमको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है, चार नियम चार मतलब परफेक्ट बना देता है, और वही हमको अहिंसा परम धर्म बनाता है। काम विकार तो छोड़ दिया, कामनाएं भी छूट गई, लाइट का ताज आ जाता है, क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ा किंतु साथ साथ उसका भी हमने क्या हो गया, उसका अंश भी छोड़ दिया, तो हमारा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ जाता है। तो ये हमारी क्या होती जाती है स्थिति, अतीन्द्रिय सुख वाली स्थिति, मतलब ये हमारी रिटर्न जर्नी बाबा से विभिन्न संबंधों की अनुभूति होती जाती है। तो जब हम सब ऐसी स्थिति आ जाती, परफेक्ट स्थिति आती, तो बाबा हमारा बच्चा बन जाता है। नोवा संबंध बच्चे का ना, बच्चा कहां बने, कब बनेगा बच्चा, किसी भिखारी का बच्चा बनेगा शिव बाबा, जब सर्वगुण संपन्न स्थिति सर्वशिला कला संपूर्ण सब, तो बाबा फिर हमारा क्या लगता है, सचमुच बाबा इतना नजदीक आता, बाबा मेरा बच्चा बन गया, सुखदायी बच्चा बन गया, तब हमें आनंद की स्थिति, सर्व संबंधों के महीन सार वाली स्थिति, लवलीन अवस्था आती है, तो वो है डीप साइलेंस की। ये भी विधेय स्थिति है, ये भी एक अंतिम अवस्था हो सकती है, राइट। अंतिम सेवा कैसी होगी, अतीन्द्रिय सुख में खोया हुआ हूं बाबा की याद में, हूं देह में ही कार्य कर रहा हूं कि तो बाबा की याद में खोया, तो सूक्ष्म वतन कहां आ गया, चलते फिरते जहां भी मैं हूं, अगर मैं हॉस्पिटल में हूं, अपने चौपड़ी में हूं, चौपड़ी में क्या है, वो भी सूक्ष्म वतन है, आने वाले को क्या फील होगा, वो भी विधेयी हो जाएगा, देहमान भूल जाएगा। आप कमरे में बैठे हो, सेंटर पे बैठे हो, घर में बैठे हो, आपके बच्चे आते हैं, आपके घर में कोई आता है, ऑफिस में हो, वो भी क्या होगा, सूक्ष्म वतन, आपका स्थान ही सूक्ष्म वतन बन जाएगा, सूक्ष्म वतन भासेगा। जैसे बाबा कमरे में जाते थे ना, कई बाबा जी, कब बाबा कैसे लगता, लाइट का बाबा लगता था, नहीं लगता था, दादियां बताती ना कैसे बाबा लाइट लाइट दिखाई देता था, वहां जाके भूल जाते थे क्या बोलना है, खो जाते थे, वहां से बाहर आने के बाद पता लगता हमने क्या बोलना था, भूल जाते, राइट। ऐसी स्थिति हमारी हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, भाषण आएगी नहीं आएगी, तो ये भी हमारी अंतिम सेवा हो सकती है, हम कहां पर हैं, राइट। और जब जब आनंद स्थिति स्थिति आ गई तो क्या हो जाएगा, आनंद की स्थिति आएगी तो आनंद माना, देखिए अतीन्द्रिय सुख क्या, तीन से दो की स्थिति, तीन माना आत्मा बाबा संबंध, तीन से दो माना सिर्फ आत्मा और बाबा, तो हो गया, दो ही संकल्प रहेंगे ना, और दो से एक की स्थिति क्या है, वो आनंद की स्थिति है, दो से एक, दो है मैं और बाबा, कि तो अभी तुम्हें समा गए, लवलीन हो गए, तो क्या हो गया, एक हो गया ना, सिर्फ नदी सागर में समा के क्या बन गई, सागर बन गई ना, नहीं, ये भी हमारी अंतिम अवस्था हो सकती है, एक बन गया बस, एक बाबा ही रह गया, अब उससे भी जब उसमें भी खो गए तो अश्लील स्थिति बन जाती है, 0.9 क्या बन गई, सूक्ष्म वतन क्या है, एक से तीन की स्थिति है, एक से तीन, तीन एबीसी आत्मा बाबा संबंध, और दो संबंध आनंद की स्थिति हो, दो से एक की स्थिति अतिंद्रिय मतलब लवलीन अवस्था हो गई, और एक से कम 0.9 परम धाम की स्थिति हो गई। संकल्प चल रहे बंद हो गया, अब आपको फील है संकल्प भी चल रहे, तो शेष स्थिति क्या है 0.9 से जीरो की तरफ जा रहे हो। शिव बाबा जीरो है, मैं 0.9 हूं, तो अशरीर आत्मा परम धाम गया, अशरीर बाबा से कंबाइंड हो गए। तो ये ऐसी स्थिति इसमें हम एकदम जैसे कोई इंजेक्शन लगा देते ना किसी को बेहोश करने का, या दवाई सुंघाते हैं ना, तो क्या होता है आत्मा कैसे होता है, दर्द उसका देखा भान खत्म, आप उसको काट सकते हो नहीं? कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो अशेष स्थिति क्या है, देहभान से देहाभिमान से मुक्त करने की स्थिति है। तो जो भी कर्म भोग हैं आपके क्षय के कर्म भोग हैं, कर्मों के हिसाब किताब है, देखे संबंधों के हिसाब किताब पे, देखे पदार्थों के हिसाब किताब है, हिसाब किताब तो होते हैं ना, उन कर्मों के हिसाब किताब से आप क्या महसूस करेंगे, सूली कांटा बन जाएगी। तो अशेष स्थिति क्या करती है आपको, देह और देह की दुनिया से परे ले जाती है परम धाम में, राइट। तो उस समय आपके सारे जो हिसाब किताब है उसमें जो भी कर्म भोग कर्म के हिसाब किताब, सहन करने की शक्ति आ जाती है, संभालने की शक्ति आ जाती है, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, मतलब सहनशीलता आ जाती है। तो इससे आपके कर्मों के हिसाब किताब धीरे धीरे चुप्त होने लगते हैं, राइट। एक्चुअली उससे हमारे अंदर पांच हार्मोन निकलते हैं, उसमें एक होते हैं एंडोर्फिन्स, पेन खत्म कर देते हैं, एनकेफेलिन खुशी पैदा करते हैं, सीरोटोनिन आनंद पैदा करते हैं, राइट, ऑक्सीटोसिन नए जन्म की दिव्य ब्राह्मण जन्म की दिव्य जन्म की अनुभूति कराते हैं, और डोपामिन उस नए जीवन का सच को सजीव कर देते हैं, राइट। तो वो फीलिंग आती है आपके अंदर, आप रहते हुए देह और देह की दुनिया से परे चले जाते हो, है ना, ये भी आपकी अंतिम अवस्था हो सकती है। हमने दादियों की अवस्था देखी, परम दादी की, दादी प्रकाशवाणी की देखी, दादी जानकी की देखी, है ना, और हमने इनकी रतन में दादी की देखी, कैसे हमेशा मुस्कुराती रहती थी, उसको देह का भान ही नहीं है, बुखार आ गया, निमोनिया हो गया, सांस नहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा है सांस नहीं आ रहा है, पर फिर वो उसको पूछे दादी कैसे हो, मुस्कुरा रही है, नहीं मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ बुखार है, नहीं मुझे तो कुछ नहीं है, दर्द की फीलिंग ही नहीं हो रही है उसको, तकलीफ ही नहीं हो रही है, राइट। तो ये अशरीर स्थिति, और अशरीर स्थिति पर जड़ क्या है, पाप कर्म, पाप कौन से, काम क्रोध रोम अहंकार जड़ है, वही पाप कर्म है, बस हम कम होंगे, ये स्थिति ज्वाला स्वरूप याद है, राइट, क्या है ज्वाला स्वरूप याद है, एकदम ज्वाला के समान याद है, राइट। और बंद कर दो तो क्या हो गया, अब इससे क्या, इस स्थिति में अभ्यास करते करते बाबा कहते हैं अशरीर स्थिति का अभ्यास करो, बार बार अशरीर हो जाओ, अशरीर हो जाओ, अशरीर स्थिति का अभ्यास करते करते क्या होगा, क्या हो जाएगा, अशरीर स्थिति का अभ्यास करते 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 मैंपन मेरापन खत्म हो जाएगा, मैं अशरीर आत्मा, देह से अलग हूं ना, देह तो है पर अशरीर आत्मा मैं हूं, तो देह से अलग होकर मन बुद्धि से ऊपर हुई हूं, किंतु देह तो अभी भी है, उससे मैंपन मेरापन खत्म होता जाएगा, और मैंपन मेरापन खत्म होता जाएगा, तो मैंपन मेरेपन का त्याग को ही निराकारी स्थिति कहते हैं, क्या कहते हैं, निराकारी स्थिति कहते हैं। और जहां त्याग होता है ना, वहां तपस्या शुरू हो जाती है, तपस्या, राइट। मैंपन मेरेपन का त्याग, तो योग तपस्या में क्या फर्क है, योग में अशरीर तक पहुंच सकते हो, किंतु तो अशरीर के बाद जब मैंपन मेरापन खत्म होगा तो तपस्या शुरू होती है, राइट। तो मैंपन तपस्या शुरू हो गई, तो इसको ज्वालामुखी याद कहते हैं, ज्वाला स्वरूप, ज्वाला स्वरूप क्या है, अशरीर, और ज्वालामुखी माने दरवाजा बंद, मैंपन मेरेपन का दरवाजा बंद, तपस्वी जीवन हो गया अभी, जिसमें मैंपन मेरापन है ही नहीं, ये अब 24 घंटा जीवन हो गया, योग एक सब्जेक्ट है, राइट, क्योंकि तपस्या एक चारों सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा है। तो निराकार तपस्या से क्या होता है, हमारे पापक्रम भस्म होते हैं, भस्म माना अब जो काम क्रोध लोम अहंकार जो आता था ना इंपल्स के रूप में, क्रोध आया अब वो ठंडी, उसको सहन करने शक्ति आ गई, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सेवा करने की शक्ति आ गई, वो भी हमें कुछ नहीं कह पाते हैं, राइट। अब ये काम विकार आया चला गया, क्रोध अब फील ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं पर ही नहीं है, मेरा पर ही नहीं है, मेरा शरीर ही नहीं है, तो काम विकार असर करेगा अभी आपके ऊपर, क्रोध असर करेगा, लोभ असर करेगा, मोह असर करेगा, अहंकार असर करेगा ही नहीं, असर करेगा तो निर्विकारी बनते जाएंगे नहीं जाएंगे, आलस्य आएगा, अलबेलापन आएगा, दोष दर्शन दिखाई देगा, बदलने की भावना आएगी, शक अनुमान आएगा, चिंता भय आएगी, जल्दीबाजी होगी, ईर्ष्या द्वेष आएगा, होगा ही नहीं, नहीं तो अंश भी खत्म हो जाएगा। तो संपूर्ण निर्विकारी बनते जा रहे हैं। तो त्याग तपस्या सेवा से अब सेवा शुरू हो जाती है। निर्विकारी स्थिति में तपस्या शुरू होती है, बेहद के निस्वार्थ भाव की सेवा शुरू होती है। तो निराकारी तो निर्विकारी बनते हैं, निर्विकारी से क्या बनते हैं, निरहंकारी। जब ऐसी बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा होती है तो उससे हम क्या बनते हैं, निरहंकारी बनते हैं। तो लास्ट स्लोगन क्या था बाबा का लास्ट दिन मुरली में, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो ये स्थिति पहुंची आपकी, निराकारी स्थिति पहुंची, निर्विकारी पहुंचे, निरहंकारी पहुंचे, तो ये भी एक स्थिति है, अंतिम अवस्था हो सकती है। क्योंकि अंतिम सेवा तो शुरू वहां होती है। अंतिम सेवा कौन सी है, ये वाली सेवा, एकदम सामने वाला एकदम क्या हो जाएगा, जो उसको चाहिए एक सेकंड में मिल जाएगा उसको। पूछा ये विघ्न विनाशक सेवा है, मैं निर्विघ्न हूं और विघ्न विनाशक भी हूं, उसके विघ्न भी खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद जैसे 63 जन्म के रिटर्न जानिए ना, तो विक्रम विनाश होते जाते, 63वां 62वां 61वां, और ये स्थिति लगातार अभ्यास करते 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 हमारी स्थिति कैसे बन जाएगी, निरंतर निराकारी निर्विकारी। उसके पहले बाबा शरीर थे, उसके पहले बाबा फरिश्ता दिखाई देते थे, नहीं उसके पहले देही मानी स्थिति थी अभ्यास, फिर आत्म मानी स्थिति थी, फिर क्या था, ऐसे लगता बाबा स्वीट साइलेंस में खोए हुए, फिर लगता बाबा डीप साइलेंस में है, फिर बाबा क्या उसमें फरिश्ता से दिखाई दे, फिर बाद में क्या दिखाई देते थे, अशरीरी, और बाद में क्या लास्ट में क्या दिखाई दिए, निराकारी निर्विकारी, और सेकंड में लास्ट में क्या बन गए, नष्ट हुआ स्मृति लब्धा, राइट। तो मास्टर बीज रूप बन गए, तो भाज मास्टर बीज रूप। तो अंतिम जो साथी कौन बन के जाएगा बाबा के साथ, मास्टर बीज रूप, बीज रूप बाबा, बीज रूप से माइंड होके सारे कलबश को सकाश दे रहे हैं। ये भी हमारी अंतिम अवस्था हो सकती है। कितनी अवस्थाएं हो गई, देही मानी, आत्म मानी, कर्मयोगी और विधेयी में 2 अवस्थाएं, स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस, और फिर अशरीरी, निराकारी, मास्टर बीज रूप। अब ये अंतिम अवस्था आपको कौन सी चॉइस है, कौन सी चॉइस है, आप क्या चाहते हो? और सेवा भी बीज रूप में सारे विश्व की सेवा है, निराकारी में भी लगभग सारे विश्व की सेवा है ना। तो अस्ततन में आना तो क्या बनना पड़ेगा, मास्टर बीज रूप, मास्टर भी बाबा से इसका माइंड होकर अगर जड़ में बैठे रहो तो जड़ में दिखाते हैं, अष्टतन दिखाते हैं ना, तो और निराकारी निर्विकारी बनोगे तो 108 की माला में आ जाओगे, राइट। अशरीर स्थिति में चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 16,000 में आ जाओगे, है ना, राइट। और उसके नीचे रह जाओगे तो लास्ट में फिर तो प्रजा में आ जाएंगे, ठीक है। क्या बनना है, कौन सी सेवा करनी है, आपके हाथ में, हमारे हाथ में है ना। खूब लगन, दिल सच्ची साफ, दिल दर्पण है, उसमें अपने अवस्था देखते रहो, अपने दिल में देखो, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी खत्म हो जाएगा, जन्म के पाप कर्म, हमारा अनकॉन्शियस माइंड भी खत्म हो गया, 100% कॉन्शियस, 100% कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जाएगी। फिर जो हम सोचेंगे वही हुआ करेगा, वही बात आएगी, वही संकल्प आएगा जो होने वाला है, तब हम कहेंगे हाँ यही होगा, अभी तो हम कहते ना पता नहीं क्या होगा, फिर यही होगा, यही होगा, हमारा कॉन्शियस माइंड हो जाएगा 100% कॉन्शियस माइंड, तो अभी हमें सत्य की नजारे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अभी हमको दिखाई नहीं देते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि अभी भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी है, एक भर 10 जन्म का तो बाकी है ना, एक जन्म का सबकॉन्शियस माइंड बाकी है, और 10 जन्म का मान लीजिए अनकॉन्शियस माइंड बाकी, तो ट्रांसपेरेंट नहीं ना, जैसे होता है ग्लास होता है, एक ट्रांसपेरेंट, एक होता है धुंधले वाला, बाथरूम में लगा होता है जो धुंधला होता है ना, आर पार नहीं देख सकते। तो जिसने 100% मन कॉन्शियस 100% पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट बन जाएंगे, सत्य की सीन सीनरी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, ऐसे लगा पहुंचे कि पहुंचे, बस पहुंचे, अभी पहुंचे अपने, हम यहां विनाश हो रहा होगा और हम वहां पर बाबा की गोद में होंगे, हम सत्य में डांस कर रहे होंगे, अपने ऐसा बोले हम अपने महल में ही है। तो लास्ट में बाबा कहते हैं वो नजारे दिखाई देंगे आपको ना, तो कैसी अवस्था चाहिए, तो ये अंत में नहीं बनेगी, अभी बनानी। बाबा ने कहा कल की मुरली में कश लास्ट में तो क्या कशम कशा होगी ना, भूकंप आए होंगे, तकलीफ हो रही होंगे, खाने को नहीं मिल रहा होगा, चारों तरफ विनाश की आग होगी, विकारों की आग होगी, है ना, पश्चाताप की आग, सारे चारों तरफ इविल सोल्स घूम रही होंगी, शरीर मिलेगा नहीं उनको। अगर आप कमजोर होंगे तो आपके अंदर घुस जाएंगी नहीं? और अगर आप शक्तिशाली, आपका अंदर स्ट्रांग होगा तो आपसे शांति प्यार खुशी लेके आपको दुआएं देती हुई चली जाएगी, उनकी मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाएगी। अगर आपका अभिमंडल स्ट्रांग बनता जाएगा ना जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, तो आपके पास आएंगी सभी आत्माएं, आएंगी आपसे सकाश लेके चली जाएंगी। तो अंतिम अवस्था क्या होगी? दाता की होगी ना, तो देवता बन जाएंगे। और अंतिम अवस्था घबराने की होगी तो क्या होगा? फिर तो दास दासी बनना पड़ेगा। तो अभी मेहनत करो, दिन रात की लगन लगाओ। दिल सच्ची साफ है तो याद अपने आप आएगी। जो दिल में होता है उसकी याद आती है, याद सताती है, और जो दिल में नहीं होता उसको याद करना पड़ता है। इसे चलते फिरते ये संस्कार बन जाए, क्योंकि दिल में कौन रहता है? संस्कार रहते हैं, स्मृति रहती है। तो शुरू में तो अभ्यास करो, अभ्यास करते करते स्मृति बन जाएगी, और हैबिट करते करते संस्कार दिल में पक्के हो जाएंगे। तो हमारे बाबा सदा ही दिल में रहेगा, और फिर सत्युग में हमारे संस्कारों में दिखाई देगा। सत्युग में साथ रहेगा, बाबा नहीं रहेगा? रहेगा साथ। किस रूप में? संस्कारों के रूप में। सत्युग किस रूप में रहेगा? संस्कारों के रूप में रहेगा। इसलिए तो क्या कहते हैं, भगवान के बच्चे हैं। देवी देवता कौन कहलाते हैं? भगवान के, भगवान भगवती कहलाते हैं ना। तो जब सत्युग में देवी देवता, भगवान हमारे साथ होगा? बोलो, किस रूप में होगा? संस्कारों के रूप में। यस, भगवान हमारे साथ होगा? संस्कारों में। देख के कहता है ना, बच्चे को देख के क्या बोलते हैं? उसका बच्चा दिखता है, ये तो उसका बच्चा दिखता है ना। तो हमारे देख के क्या कहेंगे लोग? ये तो भगवान का बच्चा है, भगवान जैसे लगता है ना, राइट? नहीं तो हमारी अंतिम अवस्था कौन सी हो जाएगी? तो सर्वगुण संपन्न भी बन जाएंगे यहीं पर ही, और फिर उसके ऊपर भी हम मास्टर बीज रूप बन जाएंगे। ठीक है, राइट। ओम शांति। चलिए, समझ में आया कि ऊपर से क्या? अंतिम अवस्था, अंतिम सेवा, उसके अनुसार अवस्था के अनुसार अपने आप सेवा हो जाएगी। ऑप्शन पर याद रखना, दिल कौन सी होनी चाहिए? सच्ची और साफ, जिस दिल में बाबा की सेवा कोई और ना हो, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। और मुरली साधन है, लास्ट संडे की मुरली याद है? मुरली 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 मुरली, जिसके दिल में मुरली है ना, बाबा और मुरली, ये तो फिजिकल मुरली है, इसको भी साधन घोटते रहो घोटते रहो, तो बाबा ही याद रहेगा। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर ना, बाबा का प्रेम पत्र है ना, तो रात को फिर एक प्रेम पत्र हम भी लिखते हैं, दो पेज का, चार पेज का बाबा लिखता है, दो पेज का हम लिखते हैं, बाबा को सारा दिल का समाचार सुनाते हैं। तो रोज का रोज आदान प्रदान होता है ना, उसके बीच में मेरा लव लेटर आते जाते रहते, उसका लव लेटर मेरे पास, मेरा लव लेटर उसके पास, रोज जाता है, तो याद रहती है, अमृत वाले पावरफुल हो जाता है। ऐसा प्यार करना है बाबा के साथ, फिर तो उसकी गोद में जाएंगे सजनी, हम सजनी या साजन के साथ ही जाएंगे, राइट, और साथ में आएंगे। ओम शांति। चलो बाइट लाइट रखो, पांच मिनट बाबा साथ में बाइट लाइट रखते, बाइट लाइट में योग कर, सीधे होकर बैठ जाओ, अलर्ट और एक्यूरेट। देखो अपनी दिल सच्ची साफ बना लो, चेक करो, मेरा दिव्य ब्राह्मण जन्म है, बार बार स्मृति इमर्ज करो, वो दिल में बाबा को रिवाइज हो रही, सच्ची दिल से महसूस करो, मेरे दिल में कौन है,